एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज ज्ञान गोष्ठी में हम बात करने वाले हैं जांजाक रूसो की, 18वीं सदी के एक ऐसे विचारक जिनके आइडियाज ने न सिर्फ अपने जमाने में हलचल मचाई बल्कि आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
बिल्कुल, रूसो जिनेवा में जन्मे 1712 में और ज्यादातर फ्रेंच में लिखा उन्होंने।
हाँ, और हमारे पास जो श्रोता के भेजे हुए नोट्स और रिसर्च हैं उनसे ये साफ है कि वो काफी क्या कहते हैं जटिल और प्रभावशाली शख्सियत थे।
बहुत ज्यादा। और दिलचस्प बात यह है जो इन स्रोतों से उभरती है कि वो थे तो ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट के दौर के, लेकिन उस दौर की जो मुख्य सोच थी ना,
जैसे तर्क और प्रगति पर बहुत ज्यादा विश्वास।
हाँ बिल्कुल वही, तर्क यानी रीजन और प्रगति यानी प्रोग्रेस में जो एक अटूट विश्वास था, रूसो उस पर गहरे सवाल उठा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए।
तो उनका मुख्य विचार क्या था फिर?
उनका जो मूल तर्क था, जो कई जगह बार बार आता है, वो यही कि इंसान मतलब स्वभाव से अच्छा होता है, नेक होता है।
अच्छा।
हाँ, लेकिन ये जो समाज है, सभ्यता है, उसने उसे बिगाड़ दिया है, भ्रष्ट कर दिया है।
हाँ, और मुझे लगता है यही आइडिया फिर उनके लोकतंत्र पर, शिक्षा पर, यहाँ तक कि ये जो प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी की बात है, उन सब विचारों की जड़ बनता है। हम आगे देखेंगे इससे।
सही कहा।
तो चलिए, श्रोता के दिए इन स्रोतों के आधार पर रूसो की इस दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत उनके समय के माहौल से करते हैं।
बिल्कुल, देखिए 18वीं सदी का यूरोप वो ज्ञानोदय का युग, बौद्धिक तौर पर बड़ी उथल पुथल का समय था।
हाँ,
एक तरफ तो देखिए विज्ञान, तर्क, व्यक्तिवाद, इन सबका बोलबाला था। लोग पुरानी परंपराओं पर, धर्म की कट्टर बातों पर सवाल उठा रहे थे।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ फ्रांस जैसे देशों में लुई 15वें और 16वें के टाइम पे वो पूरी तरह राजशाही थी, एब्सोल्यूट मोनार्की, और समाज में नीचे ही नीचे बहुत असंतोष था, अमीरों के ठाट-बाट, आम लोगों की मुश्किलें।
और इसी माहौल में फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई आगे से चलकर।
जी हाँ, उसी की जमीन तैयार हो रही थी। और पेरिस के सलून का जिक्र भी है कई लेखों में, वो बड़े मशहूर थे।
हाँ, वो बौद्धिक अड्डे थे एक तरह से।
बिल्कुल, पेरिस के सलून मतलब बौद्धिक बहस के गर्म मंच। वहां वॉल्टेयर, डिडेरो जैसे विचारक, उनको फिलोसोफिस्ट कहते थे, वो सरकार, आजादी, इंसान का स्वभाव, इन सब पर खूब बहसें करते थे।
रूसो भी थे इस महफिल में?
शुरू में थे। डिडेरो का वो बड़ा प्रोजेक्ट था ना, एनसाइक्लोपीडिया।
हाँ, विश्वकोश।
जी, उसमें रूसो ने संगीत पर कुछ लेख भी लिखे, लेकिन जैसा नोट्स में भी इशारा है, वो जल्दी ही इस माहौल से उकता गए। उनको ये सब बनावटी लगने लगा, और ये जो सभ्यता की तरक्की पर अंधा भरोसा था ना, उसके वो आलोचक बन गए।
उनके समय के जो दूसरे विचारक थे जैसे हॉब्स या लॉक, उनसे रूसो कितने अलग थे, इस पर भी कुछ नोट्स हैं।
हाँ, ये समझना जरूरी है। जैसे थॉमस हॉब्स थे, वो मानते थे कि इंसान अपनी प्राकृतिक अवस्था में मतलब समाज से पहले बिल्कुल जंगली था, लड़ाई झगड़ा, सभी का सभी के खिलाफ युद्ध।
हाँ, स्टेट ऑफ नेचर की उनकी कल्पना काफी निराशाजनक थी।
बिल्कुल, रूसो ठीक इसका उल्टा सोचते थे। उनके लिए प्राकृतिक इंसान अकेला था, आजाद था, उसमें करुणा थी और वो सुखी था।
अच्छा, और लॉक से तुलना करें तो?
लॉक तो निजी संपत्ति को सही मानते थे।
जी, जॉन लॉक के लिए निजी संपत्ति एक प्राकृतिक अधिकार था, पर रूसो, जैसा उन्होंने अपनी किताब असमानता पर विमर्श में लिखा है, वो मानते थे कि ये निजी संपत्ति ही सारी सामाजिक बुराइयों और असमानता की जड़ है।
बाप रे, बिल्कुल अलग सोच। हाँ, और अपने समय के विचारकों में देखें तो वोल्टेयर से तो उनकी दुश्मनी जग जाहिर है, डिडेरो से दोस्ती टूट गई, डेविड ह्यूम ने इंग्लैंड में पनाह दी पर रूसो ने उन पर भी शक किया। हाँ, कांट जैसे विचारक थे जिन्होंने रूसो को गंभीरता से लिया।
चलिए, अब जरा रूसो के बचपन और शुरुआती जिंदगी पर आते हैं। नोट्स बताते हैं कि वो काफी मुश्किलों भरा था।
हाँ, बहुत मुश्किल। पैदा होते ही माँ गुजर गई, पिता घड़ीसास थे, उन्होंने ग्रीक और रोमन कहानियां पढ़कर सुनाई, लेकिन जब रूसो सिर्फ 10 साल के थे, पिता को भी जिनेवा छोड़कर भागना पड़ा।
तो उनकी पढ़ाई लिखाई?
औपचारिक स्कूली शिक्षा तो लगभग हुई ही नहीं। 16 साल की उम्र में वो जिनेवा से निकल गए और एक तरह से आवारागर्दी वाली जिंदगी शुरू की। शायद इन्हीं अनुभवों ने उनमें समाज के प्रति एक संदेह पैदा किया हो।
इसी दौर में उनकी मुलाकात फ्रैंकोइस लुइस डी वारेंस से हुई, उनका बड़ा असर रहा उन पर।
जी हाँ, मैडम डी वारेंस वो एक दिलचस्प महिला थी, अमीर, स्वतंत्र विचारों वाली। वो रूसो की एक तरह से संरक्षक बनी, गाइड बनी, कुछ समय के लिए प्रेमिका भी, और माँ जैसी भी।
अच्छा।
उन्हीं के पास रहकर रूसो ने खुद से संगीत, दर्शन, गणित ये सब सीखा। ये उनके बनने का, उनके बौद्धिक विकास का बहुत जरूरी दौर था। कई जीवनियों में इसका जिक्र है।
और फिर वो पेरिस आए, लेकिन एक घटना ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। वो विंसेनिस जाते हुए जो ज्ञान का अनुभव हुआ था।
हाँ, 1749 की घटना है ये। वो अपने दोस्त डिडरो से मिलने जा रहे थे, जो जेल में बंद थे। रास्ते में उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता का विज्ञापन देखा।
किस विषय पर थी प्रतियोगिता?
विषय था, क्या कला और विज्ञान की तरक्की ने नैतिकता को सुधारा है या बिगाड़ा है। रूसो ने बाद में लिखा कि उस पल उन्हें जैसे बिजली का झटका लगा, एक इल्यूमिनेशन हुआ। उन्हें एकदम साफ हो गया कि जवाब नहीं है।
नहीं, यानी कला और विज्ञान ने बिगाड़ा है।
हाँ, उनका मानना था कि कला और विज्ञान ने इंसान को बेहतर नहीं बनाया, बल्कि उसे नैतिक रूप से कमजोर और ज्यादा बनावटी बना दिया है। इसी आइडिया पर उन्होंने निबंध लिखा, इनाम जीता और रातों रात पेरिस में छा गए। लेकिन एक तरह से ज्ञानोदय की जो मुख्य धारा थी, उसके विरोधी के तौर पर।
इसी शोहरत के साथ साथ उनके निजी जीवन का एक पहलू है जो कई स्रोतों में उठाया गया है और काफी विवादित है, उनकी साथी थेरेस लवासियर और उनके बच्चे।
हाँ, थेरेस लवासियर एक सीधी साधी अनपढ़ महिला थी जो कपड़े धोती थी। वो जिंदगी भर रूसो के साथ रहीं। उनसे रूसो के 5 बच्चे हुए।
5?
जी, और ये कड़वी सच्चाई है जिसे रूसो ने खुद अपनी आत्मकथा कन्फेशंस में माना है, कि उन्होंने उन 5 बच्चों को पैदा होने के बाद पेरिस के एक अनाथालय में छोड़ दिया था।
छोड़ दिया था, लेकिन क्यों? और अनाथालय में तो,
हाँ, उस जमाने में ऐसे अनाथालयों में बच्चों के बचने की उम्मीद बहुत कम होती थी। ये एक ऐसा काम था जिसने उनके दुश्मनों को, खासकर वॉल्टियर को, उन पर पाखंडी होने का इल्जाम लगाने का पूरा मौका दिया।
मतलब जो आदमी एमिल जैसी किताब लिख रहा है बच्चों की सही परवरिश पर,
बिल्कुल वही अपने बच्चों को छोड़ रहा है। ये उनके जीवन और उनके विचारों के बीच एक गहरा विरोधाभास है। कई लेखकों ने इस पर उंगली उठाई है।
ये वाकई चौंकाने वाला है। खैर, चलिए अब उनकी उन बड़ी रचनाओं पर आते हैं जिन्होंने विचारों की दुनिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। वो पहला निबंध तो हो गया।
हाँ, कला और विज्ञान पर विमर्श, 1750। इसने तो सीधी चुनौती दे डाली। रूसो ने कहा कि जिससे समाज तरक्की समझ रहा है, कला, विज्ञान, तौर तरीके, उसने इंसान की असली नेकी को दबा दिया है। उसे घमंडी, लालची और दूसरों पर निर्भर बना दिया है। सभ्यता ने नैतिकता को गिराया है।
ये तो ज्ञानोदय के बिल्कुल मूल विचार पर हमला था, और इसके बाद आया असमानता पर विमर्श।
हाँ, मनुष्यों के बीच असमानता की उत्पत्ति और आधार पर विमर्श, 1755। ये शायद और भी ज्यादा बुनियादी काम था। इसमें रूसो ने वो प्रकृति की अवस्था वाली बात की जहां इंसान आजाद थे, आत्मनिर्भर थे, दयालु थे।
और फिर असमानता कैसे आई?
उनका तर्क था कि निजी संपत्ति का ख्याल, वो पल जब किसी ने जमीन घेर कर कहा ये मेरा है और बाकियों ने मान लिया, वही विनाश का पल था।
अच्छा,
वहीं से समाज बना, ऊंच नीच आई, होड़ शुरू हुई, जलन पैदा हुई और सारे दुख शुरू हुए। ये आइडिया आज भी संपत्ति और समाज के ढांचे पर होने वाली बहसों में जिंदा है।
इन दो निबंधों के बाद हमारे पास जो स्रोत हैं, वो 3 और खास किताबों पर जोर देते हैं, जूली, एमिल और सामाजिक अनुबंध।
जी, जूली या नई हेलोइस 1761 एक उपन्यास था, चिट्ठियों की शक्ल में। बहुत भावुक कहानी थी, प्रेम, फर्ज, नैतिकता, सामाजिक बंधनों के टकराव की। ये किताब इतनी बिकी कि पूछिए मत।
अच्छा, तो वो उपन्यासकार भी थे?
हाँ, इसने रूसो को साहित्यिक स्टार बना दिया। और इसने वो जो रोमांटिक आंदोलन था ना, जिसमें भावनाओं पर जोर था, उसका रास्ता खोला।
और फिर 1762 में लगभग एक साथ 2 और धमाके हुए, एमिल और सामाजिक अनुबंध। एमिल ने शिक्षा के बारे में सोच को कैसे बदला?
एमिल,
या
शिक्षा पर तो शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है।
हाँ हाँ,
है तो उपन्यास जैसा, पर इसमें रूसो ने कहा कि भाई, शिक्षा का मतलब बच्चे के दिमाग में जानकारी ठूंसना नहीं है।
तो क्या है?
बल्कि उसकी जो स्वाभाविक जिज्ञासा है, जो उसके अंदरूनी अच्छाई है, उसे बढ़ने देना है। बच्चे को समाज के बुरे असर से बचा कर रखो, प्रकृति के पास रखो, उसे अपने अनुभव से सीखने दो, तभी वो नैतिक रूप से आजाद और समझदार बन पाएगा। इसी ने वो जो बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं ना, उसकी नींव डाली।
और सामाजिक अनुबंध यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी पहली लाइन तो हर किसी ने सुनी होगी, इंसान आजाद पैदा होता है और हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा है। लेकिन इसका मुख्य तर्क क्या था इसके बाद?
हाँ, वो जबरदस्त लाइन है। उसके बाद रूसो ये सवाल उठाते हैं कि फिर सही राजनीतिक व्यवस्था क्या हो। उनका मानना था कि कोई भी सरकार राजा हो या अमीर लोग, उनको हुकूमत करने का कोई पैदाइशी हक नहीं है।
तो फिर सही हुकूमत कैसे बने?
वो बनती है सामाजिक अनुबंध से, एक समझौता जिसमें सारे नागरिक अपनी मर्जी से अपनी थोड़ी थोड़ी व्यक्तिगत आज़ादी छोड़कर एक समूह बनाते हैं। क्यों? ताकि सबकी सुरक्षा और आज़ादी बनी रहे, और ये समूह चलता है सामान्य इच्छा से।
ये सामान्य इच्छा या जनरल विल, ये क्या चीज़ है? नोट्स में इस पर काफी जोर है, पर इसकी आलोचना भी होती है।
हाँ, ये रूसो के राजनीतिक दर्शन का सबसे अहम और शायद सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा है। सामान्य इच्छा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब लोगों की अलग अलग इच्छाओं को जोड़ दिया जाए।
तो फिर क्या है?
ये है पूरे समाज की, पूरे समुदाय की वो सामूहिक इच्छा जो हमेशा सबकी भलाई, कॉमन गुड के लिए होती है। रूसो कहते थे कि कानून तभी सही हैं जब वो इसी सामान्य इच्छा को दिखाते हों, और हर व्यक्ति को इसे मानना चाहिए क्योंकि इसी में उसकी असली आज़ादी है।
लेकिन कौन तय करेगा कि ये सामान्य इच्छा क्या है? यहीं पे मुश्किल आती है ना?
बिल्कुल, यहीं आलोचना शुरू होती है। क्या ये बहुमत का अत्याचार बन सकता है? या कोई नेता कह सकता है कि मैं ही सामान्य इच्छा हूँ? इससे वो जो सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र या टोटालिटेरियन डेमोक्रेसी का खतरा है वो जुड़ा है। कुछ स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं।
इन बड़ी किताबों के अलावा उनकी आत्मकथा एक बालिया बयान यानी कन्फेशंस का भी जिक्र है जो उनकी मौत के बाद छपी।
हाँ, कन्फेशंस ने तो आत्मकथा लिखने का तरीका ही बदल दिया। उसमें रूसो ने गजब की ईमानदारी से और खुद का विश्लेषण करते हुए अपनी जिंदगी, अपनी कमजोरियां, अपने शर्मनाक पल, अपनी सोच, सब कुछ बयान किया। पाठक को सीधे लेखक के मन के अंदर झांकने का मौका मिलता है। ये उस जमाने के लिए बिल्कुल नई बात थी।
तो अगर हम रूसो के मुख्य दार्शनिक योगदानों को जो इन स्रोतों से निकल कर आ रहे हैं उन्हें संक्षेप में बताना चाहें तो क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल से चार मुख्य बातें हैं। पहली, इंसान की प्राकृतिक अच्छाई और समाज का बुरा असर। ये तो उनकी पूरी सोच का आधार है।
हाँ।
दूसरी, भावना और प्रामाणिकता का महत्व। उन्होंने सिर्फ तर्क पे जोर देने के बजाय सच्ची भावनाओं और अपने असली रूप, ऑथेंटिक सेल्फ की आवाज सुनने पर बल दिया।
जी।
तीसरी, सामान्य इच्छा और लोकप्रिय संप्रभुता का विचार, यानी जनता ही असली शासक है। इसने लोकतंत्र की सोच को बहुत बदला। और चौथी, प्रगति की आलोचना। ये सवाल उठाना कि क्या ये जो भौतिक और तकनीकी विकास हो रहा है, ये सच में इंसान को ज्यादा सुखी और नैतिक बना रहा है?
ये बहुत दिलचस्प है कि उनके ये विचार उस समय के दूसरे बड़े विचारकों से कैसे टकराते थे। हमने हॉब्स और लॉक्स की बात तो की, पर वोल्टेयर जैसे उनके अपने जमाने के लोगों से तो उनके मतभेद बहुत गहरे थे।
अरे हाँ, वोल्टेयर और रूसो को तो ज्ञानोदय के दो विपरीत ध्रुव कह सकते हैं। वोल्टेयर तर्क, सुधार, सभ्य समाज की बात करते थे, रूसो सभ्यता की ही बुराई कर रहे थे और प्रकृति और भावना की ओर लौटने को कह रहे थे। उनके बीच व्यक्तिगत कड़वाहट भी बहुत ज्यादा थी।
और डीडेरो जो पहले दोस्त थे,
उनसे भी रिश्ते खराब हो गए, खासकर जब रूसो ने कला और विज्ञान की आलोचना शुरू की, जबकि डीडेरो तो एनसाइक्लोपीडिया के जरिए ज्ञान फैलाने में लगे थे। रूसो का अकेलापन और शक वो उनकी बाद की जिंदगी में बढ़ता ही गया। ह्यूम वाला मामला भी यही दिखाता है।
रूसो की विरासत, जैसा कि अलग अलग लेखों से साफ है, काफी मिलीजुली और विरोधाभासी है। एक तरफ लोकतंत्र के हिमायती, दूसरी तरफ तानाशाही प्रवृत्तियों के संभावित स्रोत।
बिल्कुल, यही उनकी विरासत का सबसे बड़ा द्वंद है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के नेता, खासकर वो जेकोबिन गुट वाले, वो रूसो को अपना गुरु मानते थे। आज़ादी, बराबरी, भाईचारा, इस नारे में रूसो की आवाज़ है। उनके विचारों ने यकीनन आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी।
लेकिन
साथ ही ये जो सामान्य इच्छा वाली बात है, इसकी ऐसी व्याख्या हो सकती है कि अगर कोई गुट या नेता कहे कि हम ही सामान्य इच्छा हैं, तो वो विरोध को कुचल सकता है, लोगों को आज़ाद होने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसा रूसो ने खुद कहा था। इसीलिए यशाया बर्लिन जैसे विचारकों ने इसमें तानाशाही के बीज देखे।
राजनीति के अलावा क्या उनके असर के दूसरे क्षेत्र भी थे जिनका जिक्र स्रोतों में है?
हाँ हाँ, बिल्कुल। साहित्य और कला में जो रोमांटिक आंदोलन आया, उस पर उनका जबरदस्त असर था। प्रकृति से प्रेम, भावनाओं को अहमियत देना, व्यक्ति के अंदर की दुनिया पर जोर, ये सब रूसो से प्रेरित था।
और शिक्षा में?
शिक्षा में तो एमिल ने क्रांति ही ला दी। उसने पेस्टलोत्सी और बाद में जॉन डेवी जैसे बड़े शिक्षा सुधारकों को प्रभावित किया। आज भी जो प्रगतिशील शिक्षा की बात होती है, उसमें उनका नाम आता है।
और आज के समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है? क्या 18वीं सदी के ये विचार आज भी हमारे लिए कुछ मायने रखते हैं?
मुझे तो लगता है शायद पहले से भी ज्यादा। देखिए, समाज में जो ऊंच नीच है, असमानता है, उस पर उनकी चिंता आज भी उतनी ही सही है। व्यक्ति और समाज के बीच का तनाव, अपनी असली पहचान की तलाश, आज की जिंदगी में जो एक अकेलापन, एलियनेशन महसूस होता है, और सबसे बढ़कर ये सवाल कि क्या ये टेक्नोलॉजी की तरक्की, पैसों की दौड़ हमें सच में खुशी दे रही है?
ये सब रूसों के उठाए हुए सवाल है।
हाँ, जो आज की बहसों के बिल्कुल केंद्र में हैं। यहाँ तक कि पर्यावरण बचाने के जो आंदोलन हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं प्रकृति की ओर लौटने की उनकी आवाज सुनाई देती है।
उनके कुछ मशहूर कथन दोहराना भी अच्छा रहेगा जो उनके विचारों का निचोड़ है। पहला तो वही, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है।
हाँ, सामाजिक अनुबंध की ये पहली लाइन तो जैसे उनका पहचान पत्र है। इंसान की असली आजादी और समाज के बंधनों का तनाव इसमें साफ दिखता है।
एक और जो आजादी के महत्व पर है, स्वतंत्रता का त्याग करना मनुष्य होने का त्याग करना है, मानवता के अधिकारों और यहाँ तक कि उसके कर्तव्यों को भी सौंप देना है।
ये भी सामाजिक अनुबंध से है। मतलब आजादी कोई विकल्प नहीं, इंसान होने की शर्त है। उसे छोड़ना अपनी पहचान छोड़ना है।
और निजी संपत्ति पर वो तीखी टिप्पणी, पहला व्यक्ति जिसने जमीन के एक टुकड़े को घेर कर ये कहने की सोची ये मेरा है, और जिसे विश्वास करने के लिए पर्याप्त भोले लोग मिल गए, वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था।
हाँ, ये असमानता पर विमर्श से कैसे एक विचार, निजी संपत्ति का विचार ने कुदरती बराबरी खत्म करके समाज में बंटवारा और झगड़ा पैदा कर दिया, ये आज भी पूंजीवाद और संपत्ति के रिश्तों की नैतिकता पर एक बड़ा सवाल है।
जैसा हमने उनके बच्चों वाले मामले में देखा, रूसो आलोचनाओं से ऊपर नहीं थे। स्रोतों में और कौन सी मुख्य आलोचनाएं हैं?
देखिए, सामान्य इच्छा की जो अस्पष्टता है और उससे तानाशाही का जो खतरा है, वो सबसे बड़ी आलोचना है।
जी।
दूसरा, उनका अपना पाखंड, खासकर बच्चों के मामले में। तीसरा, वो नेक जंगली आलिमो, नोबल सैवेज वाला विचार। कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना है, असलियत नहीं। इंसान का स्वभाव और पुराना जीवन इतना सीधा साधा नहीं था।
और
चौथा, जैसा कुछ नारीवादी आलोचकों ने कहा है, एमएल जैसी किताबों में औरतों के बारे में उनके विचार काफी दखियानुसी और मर्दवादी हैं। और पांचवा, कभी कभी उनके विचारों में विरोधाभास भी दिखता है, जैसे एक तरफ प्रकृति की तारीफ, दूसरी तरफ एक जटिल सामाजिक अनुबंध की वकालत।
चलिए, अब कुछ हल्की फुल्की बातें। स्रोतों में कुछ मजेदार चीजें भी मिली, जैसे उनका संगीत से लगाव।
हाँ, ये काफी दिलचस्प है। वो सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक अच्छे संगीतकार और संगीत के जानकार भी थे। उन्होंने म्यूजिक नोटेशन का एक नया सिस्टम बनाने की भी कोशिश की थी।
अच्छा।
उनका एक ओपेरा था, ले दीवान दु विलाज, मतलब गांव का जादूगर। वो काफी हिट हुआ था और राजा के दरबार में भी पेश किया गया था।
कमाल है।
और मजे की बात ये कि इतने बड़े दार्शनिक होने के बावजूद वो अक्सर अपना खर्चा चलाने के लिए संगीत की नकल करके, मतलब म्यूजिक कॉपी करके पैसे कमाते थे।
और उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में वो जो पैरानोया यानी वहम की बीमारी बढ़ गई थी, उसका भी जिक्र है।
हाँ, अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो काफी वहमी हो गए थे। उन्हें हर वक्त लगता था कि उनके पुराने दोस्त, दूसरे विचारक सब उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसी वजह से वॉल्टेयर, डिडेरो, ह्यूम सबसे उनके झगड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी कोई पुरानी और दर्दनाक शारीरिक बीमारी थी, शायद मूत्राशय से जुड़ी, जिसने उनके दिमागी सुकून और अकेलेपन को और बढ़ाया होगा।
लेकिन कहते हैं अंत में उन्हें किसी और चीज में शांति मिली।
हाँ, ये बात दिल को छूती है। अपने आखिरी सालों में जब वो लोगों से बिल्कुल कट से गए थे, उन्हें वनस्पति विज्ञान, मतलब बॉटनी में गहरा सुकून मिला।
पौधों में?
जी, वो अकेले लंबी सैर पर जाते, तरह तरह के पौधे जमा करते, उनके बारे में पढ़ते लिखते। इसी शांत काम का जिक्र उनकी आखिरी अधूरी किताब रेवरीज ऑफ द सॉलिटरी वॉकर में मिलता है।
रूसो के इस उलझे हुए जीवन और क्रांतिकारी विचारों की इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को क्या छोड़ना चाहेंगे, खासकर आज के संदर्भ में?
आज की दुनिया को देखें, खासकर ये डिजिटल दुनिया, हमारी एक ऑनलाइन पहचान होती है, एक असली स्व होता है। अक्सर दोनों में एक तनाव रहता है, एक दूरी रहती है। हम लगातार दुनिया के सामने खुद को एक खास तरह से पेश कर रहे होते हैं।
हाँ, ये तो है।
रूसो ने भी तो प्राकृतिक स्व और समाज द्वारा हम पर थोपी गई भूमिकाओं, यानी सामाजिक स्व के बीच के इसी द्वंद्व की बात की थी। तो आज ये सोचना बनता है कि क्या ये सोशल मीडिया, हमारी ऑनलाइन मौजूदगी, हमें ज्यादा सच्चा, ज्यादा प्रामाणिक बनाती है,
या
ये भी एक तरह का नकाब है जो हमें हमारे प्राकृतिक स्व से और दूर ले जाता है, जैसा रूसो ने अपने जमाने के समाज के बारे में महसूस किया था, क्या हमारी ये ऑनलाइन दुनिया रूसो की आलोचनाओं का एक नया मैदान बन गई है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।